Recording in
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں، معارف القرآن کی جلد نمبر 3 میں سے، اور آیات نمبر 95, 96, 97 اور 98. اس کی جو ہے وہ ہم تفسیر پڑھ رہی ہیں، خلاصہ تفسیر یعنی بیان القرآن، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے، جو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل فرمائی ہے خلاصہ تفسیر کے عنوان کے تحت. تو ہم اس میں یہاں تک پہنچے تھے، پیج 399 پر تھے. جلدی سے ہم شروع سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ ترجمہ بھی ہے، ساتھ ساتھ بریکٹس میں تفسیر بھی ہے، کہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گھٹلیوں کو، یعنی زمین میں دبانے کے بعد جو دانہ یا گھٹلی پھوٹتی ہے، یہ اللہ ہی کا کام ہے. وہ جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکالتا ہے، دانہ بے جان ہوتا ہے بالکل. ٹھیک ہے، جو عام معروف یعنی عرف کے اندر، عام بول چال میں جو بیج ہوتا ہے اس کو کوئی لیونگ تھنگ نہیں کہتا ہے، اس کو جو ہے وہ ڈیڈ چیز ہی کہا جاتا ہے. باجرے کا بیج ہے، یا دھنیا کا بیج ہے، یا کسی بھی پودے کا بیج ہے، تو وہ زمین میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کے اندر سے کیا چیز نکلتی ہے سب دیکھتے ہیں. تو یہ اللہ ہی کا کام ہے، وہ جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکال لاتا ہے، جیسے نطفے سے آدمی پیدا ہوتا ہے، اور وہ بے جان چیز کو جاندار چیز سے نکالنے والا ہے، جیسے آدمی کے بدن سے نطفہ ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایون پودے کے اندر سے بھی جو بیج ظاہر ہوتا ہے، تو وہ بیج جو ہوتا ہے وہ ڈیڈ چیز ہوتی ہے. پودا جو ہے وہ نباتات میں آتا ہے، گرو کر رہا ہوتا ہے پودا. ٹھیک ہے نا، تو پودے میں تو زندگی نظر آتی ہے. ہاں بھائی، وہ باقاعدہ موو کر رہا ہے، بیکاز موومنٹ ہی کو ہم سمجھتے ہیں نا زندگی. موومنٹ موومنٹ ختم ہو گئی تو سمجھتے ہیں کہ جی زندگی ختم ہو گئی. تو پودا تو موو کر رہا ہوتا ہے، سلو موو کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ آج کے دور میں تو کیمرہ فٹ کر دینا بڑا آسان ہے، کیمرہ فٹ کر دیں، ایک دن میں آپ کو اس کی موومنٹ صاف نظر آ جائے گی. پھر اس کو آپ فاسٹ پلے کر کے، ٹھیک ہے نا، 1.5 پہ بھی نہیں بلکہ 2x کے اوپر پلے کر کے آپ دیکھ لیجیے گا کہ بھائی پھول جو کھلتا ہے وہ کیسے کھل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، پودا پورا موو ہو رہا ہوتا ہے. تو اس موومنٹ والی چیز کے اندر سے یہ جو بیج نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو ڈیڈ چیز کہلاتی ہے، کیونکہ بیج تو نہیں موو ہوتا. ٹھیک ہے، جمادات، بیج جو ہے پھر وہ جمی ہوئی چیز میں سے آئے گا نا. ٹھیک ہے، یہی معاملہ ہے. تو اللہ یہ ہے جس کی ایسی قدرت ہے، سو تم اس کی عبادت چھوڑ کر کہاں غیر اللہ کی عبادت کی طرف الٹے چلے جا رہے ہو. کیا مطلب عبادت کا؟ مطلب جس کو سمجھ میں آیا وہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، ورنہ تو اس کے لیے یہ بات نعوذ باللہ. اور ہے تو اللہ کا قرآن، لیکن اس کے لیے اللہ کا قرآن ارریلیونٹ ہو جائے گا. اللہ کا قرآن ارریلیونٹ، ٹھیک ہے، جو کہ عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھتا، تو اس کے لیے اللہ کا قرآن ارریلیونٹ ہو جائے گا. کتنی بری برا لفظ ہے یہ ارریلیونٹ کا. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ مجھ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، क्योंकि मैं तो सजदा ही नहीं करती, मैं तो सजदा ही नहीं करता किसी दूसरी चीज को, ठीक है, लेकिन मोहब्बत, मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत तो करता हूँ जी, लेकिन मोहब्बत का इबादत से क्या ताल्लुक? मोहब्बत मोहब्बत होती है, इबादत इबादत होती है, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक? तो जो ऐसा सोचता है तो उसके लिए तो अल्लाह का ये कुरान फिर इररिलेवेंट हो गया ना, क्योंकि फिर ये आपके बारे में तो बात नहीं हो रही है, तो फिर किसी और के बारे में बात हो रही है, तो फिर आपके लिए तो हिदायत ना हुई ना इसके अंदर, जब ये आपके बारे में बात ही नहीं हो रही, तो फिर तो आपके लिए ये हिदायतनामा ना बना, इसी को तो इररिलेवेंट होना कहेंगे। लेकिन हकीकत तो ऐसी नहीं है ना, ये तो हम सब के लिए रेलिवेंट है ना, हम सब के लिए हिदायतनामा है ना, तो इस वजह से इबादत को जब तक मोहब्बत की मायने में नहीं समझेंगे उस वक्त तक बात ही समझ में नहीं आएगी हमारे, कि हमसे क्या ताल्लुक है इस बात का। तो अपनी मोहब्बतों को हमें टटोल के देखना है कि क्या अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा किसी दूसरी चीज की मोहब्बत हमारे दिल में आ गई है। इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, हम उसकी इबादत कर रहे हैं जिसकी मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह से ज्यादा आ गई है, ठीक है। और वो कैसे ज्यादा आती है, ये कोई तराजू तो है नहीं, ठीक है ना, अल्लाह करे वो क्लास ले रही हूँ भाई, लिखने का इतना टाइम नहीं मिलता मुझे, जिन्होंने ये सवाल पूछा था कि लोग कहते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते, हम जो है वो पर्दा नहीं करते, हम जो है वो फलाना काम नहीं करते जो इस्लाम में है, लेकिन फिर भी हमारा अल्लाह के साथ बड़ा ताल्लुक है, हमारा अल्लाह के साथ बड़ा ताल्लुक है, और हमारा अल्लाह के साथ बड़ा कनेक्शन है, और हमारा अल्लाह के साथ बड़ा जो है ना वो नियत है, अल्लाह हमारी नियतों को जानता है, हम नमाज ही पढ़ते हैं लेकिन अल्लाह हमारी नियतों को जानता है, क्या मतलब भाई, ठीक है, कि अल्लाह ताला की मोहब्बत है हमारे दिल के अंदर। अच्छा, अगर वो ये कहना चाह रहे हैं, अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे दिल में नदामत है, शर्मिंदगी है इस बात के ऊपर कि हम नमाज नहीं पढ़ते, हम पर्दा नहीं करते, तो हाँ अल्लाह ताला आपकी नीयत को जानता है कि आपके दिल में नदामत है, शर्मिंदगी है इस बात के ऊपर, अल्लाह ताला फिर इसको तौबा के तौर पे कबूल भी कर सकता है, तौबा के तौर पे इसको कबूल कर लेगा आपके दिल की नदामत को, शर्मिंदगी को, और फिर अल्लाह ताला जो है वो आपको तौफीक अता फरमा देगा कि हाँ भाई अब आप पर्दा भी कर लें, आप जो है वो नमाजें भी पढ़ लें। तो दिल की नियत अल्लाह को पता है, अगर वो इस मायने में कह रहे हैं कि दिल की नियत अल्लाह को पता है, यानी हम नादिम है शर्मिंदा है, अल्लाह को ये बात पता है कि हम इस बात पर नादिम और शर्मिंदा है, फिर तो ठीक है, ठीक है, यानी एक हद तक ठीक है कि हाँ भाई अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल करके आपको नेकी की तौफीक अता फरमा देंगे। लेकिन अगर वो ये कह रही हैं आपसे कि हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक है, मोहब्बत का ताल्लुक है, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते और हम इसकी जरूरत भी महसूस नहीं करते कि हमें नमाज पढ़ने की जरूरत है, पर्दा नहीं करते और हम इसकी जरूरत भी महसूस नहीं करते कि हमें पर्दा करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे दिल में है, ठीक है, और अल्लाह ताला को यानी अल्लाह ताला से हमें मोहब्बत है, ठीक है, तो ये सरासर क्या है, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है, ये शैतान शैतान का धोखा है, ठीक है ना, ये शैतान का दजल है, फरेब है, ये शैतान का धोखा है कि आपने अल्लाह के हुक्मों को इस काबिल तो ना समझा कि उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करती, या कम से कम अगर नाकाम हो रही हैं तो उसके ऊपर नादिम होती, ठीक है ना, इस काबिल तो आपने अल्लाह के हुक्म को समझा नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह आपसे मोहब्बत कर रहा है, ठीक है, तो ये आपके आपको धोखा लग गया है, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत दिल में कैसे है, दिल में है कि नहीं है, इसके लिए कोई तराजू नहीं है कि उस पर चेक कर रहे हैं कि अच्छा मोहब्बत इसकी ज्यादा है कि मोहब्बत उसकी ज्यादा है, अल्लाह की ज्यादा है कि अल्लाह ताला की मखलूक की मोहब्बत ज्यादा है, कोई तराजू भी थोड़ी है दिल के अंदर लगा हुआ जिसमें मोहब्बत तोल रहे हैं, क्या तराजू है अल्लाह की मोहब्बत के होने का, क्या तराजू है कि अल्लाह के हुक्मों को सबसे अहम समझता है, अल्लाह की मर्जी को, यानी अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की मर्जी इज द सेम थिंग, ये कोई अलग अलग चीज नहीं है कि अल्लाह की मर्जी कुछ और है और अल्लाह के हुक्म कुछ और है, नहीं, अल्लाह के हुक्म इज इक्वल टू अल्लाह की मर्जी, अगर अल्लाह की मर्जी को सबसे अहम समझता है, अल्लाह की मर्जी को, अल्लाह के हुक्म को सबसे अहम समझता है, ठीक है, तो अल्लाह की मोहब्बत है, बेशक कम है लेकिन है, ठीक है, और अगर अल्लाह के हुक्मों पे अमल भी करता है तो फिर अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा है। ये है तराजू, ये है मेजर अल्लाह की मोहब्बत का, ठीक है ना। और उसके अलावा कोई और चीज अल्लाह की मोहब्बत की नहीं है। तो अगर वो आपसे ये कह रही हैं या वो लोग आपसे ये कहते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं, हम पर्दा नहीं करते, लेकिन अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक मोहब्बत वाला है, तो हम आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? आप उनको कुछ, बेशक उनको आप समझा सकती हैं तो समझा लें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले साजिद ने सारी चीजें समझाई हैं, ऐसे आप उनको समझा लें अगर समझा सकती हैं। और अगर नहीं समझा सकती है ना, तो कम से कम अपने दिल में बिल्कुल क्लियर रहें, अपने जहन में बिल्कुल क्लियर रहें कि ये या तो वो जिस नियत की बात कर रही है वो तौबा की नियत है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो तौबा की बात नहीं कर रही, बस दिल में अल्लाह की मोहब्बत की बात कर रही है, तो ये झूठ है, ये धोखा है, ये फरेब, ठीक है ना। तो आपका जो सवाल था ना कि आई डोंट नो हाउ टू रेस्पॉन्ड टू देम, तो दिस इज हाउ यू शुड रेस्पॉन्ड टू देम, ठीक है ना। दिल में अपने बिल्कुल क्लियर रहे इस सिचुएशन, क्योंकि रिस्पॉन्स का मतलब जरूरी नहीं होता कि आप उनको बाकायदा जवाब भी दें, बल्कि रेस्पॉन्स में ये भी शामिल होता है कि आपके दिल में इस बात को सुनकर के क्या रेस्पॉन्स पैदा होता है, आपके दिल में इस बात को सुनकर के क्या रिस्पॉन्स पैदा होता है, ठीक है ना। तो ये रिस्पॉन्स आपके दिल में पैदा होना चाहिए, बेशक आप उनको जुबान से कुछ कह रही हैं या नहीं कह रही हैं, ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नहीं, किसी को नहीं बात समझ में आई हो तो पूछ लिएगा। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे कि अल्लाह तो ये है जिसकी ऐसी कुदरत है, सो तुम उसकी इबादत को छोड़ करके कहाँ गैर अल्लाह की इबादत की तरफ उल्टे चले जा रहे हो, यानी कहाँ तुमने जो है वो गैर अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ा लिया है और तुम उन्हीं की तरफ भागे चले जा रहे हो, चाहे वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो तुम्हारा कोई दोस्त हो, चाहे वो तुम्हारा कोई उस्ताद हो, चाहे वो तुम्हारा कोई पीर हो। पीर भी अगर तुमने ऐसा बनाया हुआ है जो कि तुम्हें अल्लाह की इबादत से हटा करके किसी दूसरी चीज पे लगा रहा है और तुम उसी की बात माने चले जा रहे हो, तो ये भी तुम उसी की इबादत कर रहे हो, पीर साहब की इबादत कर रहे हो, तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हो। ऐसे झूठे पीर भी तो होते हैं ना दुनिया के अंदर, और बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इस वजह से इनको भी याद रखें कि ये भी अल्लाह के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकते हैं, इनको इजाजत नहीं अल्लाह के रास्ते की रुकावट बनने का, पीर साहब को या दूसरे साहब को। तो फरमाया कि तुम उनकी इबादत छोड़ कहाँ भागे चले जा रहे हो, अन्ना तो फकून, वो अल्लाह ताला सुबह सादिक का रात में से निकालने वाला है, यानी रात खत्म हो जाती है और सुबह सादिक जाहिर हो जाती है, और उसने रात को राहत की चीज बनाई है कि सब थके थकाए सोकर आराम पाते हैं। गुजर गए वो दिन जिसमें थके थकाए सो के आराम पाते थे, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि क्या सही है क्या गलत है, तो इस वजह से दुनिया यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो नहीं है कि भाई अब दुनिया में जो है वो लाइटिंग आ गई है तो अब जो है वो तफसीर में ये बात मेंशन ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तो जो है वो जमाना बदल गया है तो तफसीर भी बदल जानी चाहिए इसके हिसाब से। नहीं भाई, तफसीर कैसे बदल जाएगी इसके हिसाब से, तो इस वजह से ये बात तो उन्होंने यहाँ पे लिखनी थी ताकि कम अज कम हमारी अंडरस्टैंडिंग तो सही रहे ना कि ऐसा होना चाहिए, बेशक करना रहे हो उसके ऊपर अमल, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि सब थके थकाए सोकर आराम पाते हैं, और सूरज और चांद की रफ्तार को हिसाब से रखा है, यानी उनकी रफ्तार मुंजबित है जिससे औकात के इंजिबात में सहूलत हो। तो बहुत ही अच्छी कैलकुलेशंस के साथ है, और हम इसके हिसाब से अपने औकात का जो है वो मेजरमेंट करते हैं, हिसाब रखते हैं, हत्ता के सूरज चांद के हिसाब से जो परपेचुअल कैलेंडर्स बन गए हैं, परपेचुअल नमाज कैलेंडर्स हैं, जो कि हर साल वही एक कैलेंडर चल रहा होता है नमाज के औकात का, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा होता वो, तो वो कैसे बने, वो भी इसी कैलकुलेशन के जरिए से बने। और जब दज्जाल नमूदार हो जाएगा, कल इसके ऊपर बड़ी बात हुई थी कि दज्जाल नमूदार होगा तो एक दिन जो है वो 1 साल के बराबर होगा, तो सहाबा को तो था नमाज का इश्क, नमाज सबसे अहम चीज थी उनके लिए, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि अच्छा साल एक दिन 1 साल के बराबर होगा तो फिर हमारी खेती बाड़ी तो बर्बाद हो जाएगी, या ये कैसे होगा और हमारा जो है वो रात को सोने का निजाम, अच्छा ये भी नहीं उनको फिक्र हुई कि फिर हम रात को सोएंगे कैसे, फिर हमें आराम सुकून कैसे मिलेगा, ये नहीं उनको फिक्र हुई, ये नहीं सवाल किया उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से कि अगर एक साल तक दिन रहेगा तो फिर तो हमारी नींदें हराम हो जाएंगी और हमें तो हमारी तो आंखें सूज जाएंगी और हमें तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा और हमें तो शुगर का मर्ज हो जाएगा। अगर उनको पता होता कि शुगर का मर्ज क्या होता है तो वो ये भी पूछ लेते कि शुगर का मर्ज हो जाएगा रात को जागने की वजह से। नहीं, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। क्या पूछा? नमाजें कैसे पढ़ेंगे? क्यों? इसलिए कि अल्लाह के आशिक थे और नमाज पढ़ने में उनकी अल्लाह से मुलाकात होती थी। अपने माशूक से, अपने महबूब से मुलाकात कहाँ होती थी? नमाज में होती थी। अल मेराजु अल असलातु मेराजुल मोमिन, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना। तो उनको ये फिक्र पड़ गई कि हम जो है वो फिर क्या, मतलब क्या एक साल में क्या 5 नमाजें पढ़ेंगे? फिर तो 5 मरतबा अल्लाह से मुलाकात होगी खाली। तो फौरन ये सवाल पूछा तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम अंदाजे से नमाज पढ़ोगे। क्या मतलब? कि 5 नमाजें नहीं पढ़ोगे, बल्कि जिस तरह एक दिन की एक नमाजें 5 नमाजें होती है ना, वो एक दिन की 5 नमाजें तुम पढ़ोगे। तो जाहिर सी बात है कि एक दिन एक साल के होने का मतलब नहीं, ये नहीं है कि वो वाकई एक दिन स्ट्रेच होकर के एक साल बन जाएगा। वाकई नहीं बनेगा, बस लाइटिंग हो जाएगी। जैसे आप किसी घर में रह रहे हैं और उस घर में जो है वो 24 आवर्स 24/7 लाइटिंग है, तो अब इसका मतलब ये कोई थोड़ी है कि आप जो है वो कहें कि अच्छा यहाँ तो हर वक्त दिन ही रहता है तो इस वजह से मैं जो हूँ वो एक वक्त की नमाज पढ़ूंगा, जोहर की नमाज पढ़ूंगा खाली। क्योंकि जोहर की नमाज जो है ना वो उस वक्त होती है जब पूरी लाइटिंग हो, तो मैं सिर्फ एक जोहर की नमाज पढ़ूंगा। ऑफ कोर्स नॉट। अब जोहर भी पढ़ेंगे, असर भी पढ़ेंगे, मगरिब भी पढ़ेंगे, ईशा भी पढ़ेंगे, हालांकि ईशा के वक्त भी पूरी की पूरी लाइट हो रही होगी, फिर भी आप ईशा पढ़ेंगे। फिर फजर भी पढ़ेंगे, हालांकि फजर के वक्त भी पूरी की पूरी लाइट हो रही होगी, उस वक्त फजर भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? कैसे पढ़ेंगे? परपेचुअल कैलेंडर में टाइम देखेंगे, अपनी घड़ी का टाइम देखेंगे, और जब घड़ी का टाइम उस कैलेंडर के मुताबिक हो जाएगा तो सुबह फजर पढ़ लेंगे। बिल्कुल यही मामला दुनिया में भी उस वक्त हो रहा होगा। ठीक है? तो ये सारी कैलकुलेशंस कैसे करी इंसान ने, जब अल्लाह ताला ने सूरज और चांद का निजाम ऐसा मुंजबित बना दिया। ठीक है? तो फरमाया कि ये के हिसाब से उनकी रफ्तार हो, यानी उनकी रफ्तार हिसाब से ही होती है। ठहराई हुई बात है ऐसी जात की, यानी ये ठहराई हुई बात है ऐसी जात की, क्या है? जाले का तकदीर। तकदीर का तर्जुमा हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने कैसे किया? ठहराई हुई बात, यानी प्री डिटर्मिंड फैक्ट है ये। किसका प्री डिटर्मिंड है ये? ऐसी जात की जो कि कादरे मुतलक है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत है, अल अजीज अल अलीम, कि इस तरह हरकत पैदा करने पर उसको कुदरत है और बड़े इल्म वाला है। ठीक है? अलीम है, कुदरत, अजीज है और अलीम, अल अलीम बड़े इल्म वाला है। ठीक है? कि इस रफ्तार की मसलहतें और हिकमतें जानता है, इसलिए इस खास तरह पर ठहरा दिया है उनको। ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है ना, ये खुद ब खुद नहीं हो रही है ना। तो इसमें चूंकि ये खुद ब खुद नहीं हो रही है, तो इनके लिए मजहूल का सीगा जो है ना, फिर वो अक्सर मजहूल का सीगा इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि मारूफ का सीगा इस्तेमाल होता है। यानी कि कौन है उसका भी तस्किरा। देखें, जो ग्रामर थोड़ी बहुत भी जानते हैं, या इवन उर्दू ग्रामर या अंग्रेजी की ग्रामर भी जिनको याद है, और अरबी की ग्रामर तो और भी ज्यादा इसको बात को क्लियर कर देती है कि मारूफ का सीगा क्या होता है, मजहूल का सीगा क्या होता है। मारूफ ऐसी बात को कहते हैं कि जिसके अंदर करने वाले का तस्किरा मौजूद होता है, और मजहूल इस तरह से बात करने को कहते हैं कि जिसके अंदर करने वाले का तस्किरा मौजूद नहीं होता। ठीक है? एक्टिव और पैसिव, अंग्रेजी ग्रामर में उसको एक्टिव और पैसिव कहते हैं। एक्टिव में डूअर का तस्किरा मौजूद होता है, और पैसिव वॉइस के अंदर डूअर का तस्किरा मौजूद नहीं होता। इट वॉज डन, भाई हु डिड इट, उसका तस्करा मौजूद नहीं है। इट वॉज डन, बस। ठीक है? तो ये जो है ना, अल्लाह के जो करने के काम होते हैं ना, उनका जब हम तस्करा करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह का जिक्र भी करें उसके अंदर, यानी एक्टिव फॉर्म में बात करें, पैसिव फॉर्म में बात नहीं करें। ठीक है? चाहिए ऐसा। इसके बगैर कर भी सकते हैं, पैसिव फॉर्म में भी कर सकते हैं, कि अगर ये अंडरस्टूड बात हो कि हाँ भाई अल्लाह ही कर रहा है, बोलने वाले के जहन में भी बात क्लियर हो कि हाँ अल्लाह ही कर रहा है, और सुनने वाले के जहन में भी बात क्लियर हो कि अल्लाह ही कर रहा है, तो फिर पैसिव फॉर्म भी चल जाती है। लेकिन कोशिश करें ना कि एक्टिव फॉर्म में बात करें, ताकि अल्लाह का जिक्र तो आ जाए ना आपकी जुबान पर, अल्लाह का नाम आ जाए आपकी जुबान पर। ठीक है, अल्लाह के नाम की बरकतें तो अल्लाह वालों ने जो बयान करी है उनको तो हम याद ही नहीं कर सकते इस क्लास के अंदर। अल्लाह के नाम की बरकतें, तो अल्लाह का नाम क्यों नहीं लेते? मिसाल के तौर पर कोई पूछता है कि भाई एक है, उनका इंतकाल रमजान के महीने में हुआ और शब कदर की रात में इंतकाल हुआ, तो क्या उनकी मगफिरत हो जाएगी? ठीक है, ये बात भी ठीक है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि क्या उनकी मगफिरत हो जाएगी। लेकिन अगर इस तरह से भी अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर नहीं है कि क्या अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ कर देंगे? अगर उनका इंतकाल रमजान के महीने में हुआ और शबे कदर की रात में हुआ, तो क्या अल्लाह करीम, करीम भी साथ लगा दें अगर, अल्लाह करीम उनके गुनाहों को माफ कर देंगे? ठीक है, तो अगर इस तरह से बात करें तो फिर जवाब खुद ही इसका जवाब मिल जाएगा हमें, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई ये कोई सवाल है, वो हजरत फारिग बैठे हुए व्हाट्सएप के ऊपर, चलो भाई व्हाट्सएप डन डन उठाया और डर भेज दिया हजरत को मैसेज। कोई एक बंदा तो इस तरह नहीं करता ना, माशाल्लाह काफी सारे लोग होते हैं। तो जो काम के सवाल हैं वो कर लें, जो वाकई आपको पूछने के सवाल हैं, ये तो नहीं कि भाई अपने दिल की एक दुखड़न है, दिल की दुखड़न जो है वो भी बयान करना करना है हजरत को, क्योंकि हजरत फारिग बैठे हैं व्हाट्सएप के ऊपर और कोई काम नहीं है उनको करने का। ठीक है, तो इस वजह से कभी अपने सवाल को जरा खुद भी पहले लिख करके ना सोच लेना चाहिए कि मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ। ये खास तौर पर खवातीन ज्यादा करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मर्द भी करते हैं इस तरह के बेवकूफी के सवाल। खुद अपने सवाल को एक दफा लिख करके अगर पढ़ लें ना, तो कोई ऐसा सवाल नहीं होता जो कि भेजा जाए बाकायदा। ठीक है, लेकिन दिमाग में बस ये खन्ना सवार है कि बस फारग बैठे हुए हैं, बस मेरे ही सवाल का जवाब देने के लिए तो बैठे हुए हैं। भाई काम का सवाल करो, बेशक करो, हुस्नु सुआले निस्फुल इल्मी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुस्नु सुआले निस्फुल इल्मी, अच्छा सवाल आधा इल्म है। तो क्या मतलब इसका कि सवाल करना इज एनकरेज, लेकिन हुस्नु सुआले अच्छा सवाल करना, ये तो नहीं ना कि फारिग बंदे को समझ करके जो है वो जो जी में आया उठा करके जो है वो भेज दिया उठा करके। भाई डिस्ट्रैक्शन होती है और बहुत से असल कामों से जो है वो इंसान की तवज्जो हट जाती है इस वजह से। तो भाई इसको अगर इस तरह से अगर खुद जो है ना इस तरह से लिख लेती कि अल्लाह करीम जो है वो मगफिरत कर देगा या नहीं कर देगा, तो खुद ही जवाब मिल जाता कि जब अल्लाह करीम है, उसने रमजानुल मुबारक की रात अता फरमाई है और जो है वो तकलीफों में गुजार करके फिर मौत अता फरमाई है, तो वो अल्लाह करीम को क्या पड़ी हुई है कि वो नहीं करेगा मगफरत है? और कोई कुछ नहीं काम मिला उसको। लेकिन ईमान की भी तो शर्त है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ईमान की शर्त है, क्योंकि रमजान मुबारक की मौत तो किसी और को भी नसीब हुई थी ना, मशहूर तरीन इंसान को रमजान मुबारक की मौत नसीब हुई थी कि नहीं हुई थी? किसको याद है भाई, रमजान मुबारक की मौत एक बड़े मशहूर तरीन इंसान को नसीब हुई थी, किसको? अबू जहल। एग्जैक्टली, है ना, अबू जहल कब मरा था? 17 रमजान मुबारक को मरा था। तो रमजान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में मरने वाला जो है वो जन्नत में जाएगा अगर ईमान के बगैर गया हो, ठीक है ना? 70 काफिर जो है ना वो 17 रमजान मुबारक में जहन्नुम रसीद हुए थे। ठीक है, तो ईमान शर्त है, लेकिन अगर ईमान सलामत था तो फिर अल्लाह ताला मगफरत फरमा देंगे। भाई अल्लाह ताला के पैसे लगते हैं, कोई अल्लाह ताला को तकलीफ होती है अपने बंदों को माफ करने में। ठीक है, लेकिन हम इस पे तकिया तो नहीं करके बैठ सकते। पहली बात तो हमें ये नहीं है कि भी ईमान पे मौत आएगी, किसको पता कि ईमान पे मौत आएगी? ठीक है, और दूसरी बात यह कि रमजान मुबारक में मौत आएगी, ये किसको पता कि रमजान मुबारक में मौत आएगी? जिस वजह से हम इस पर तकिया नहीं कर सकते, हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते कि जी बस हो जाएगी सब कुछ, हमें तो अपना काम करना है। लेकिन दूसरे के बारे में हमारा नजरिया ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह क्यों नहीं माफ करेगा उसको? अगर ईमान पे मौत अता फरमाइए तो अल्लाह क्यों नहीं माफ करेगा उसको? ठीक है, दूसरे के बारे में ये नजरिया होना चाहिए हमारे दिल में। ठीक है, अपने बारे में ये होना चाहिए कि जैसे उन्होंने खवातीन में लिखा कि ईमान पे मेहनत करेंगे तब ईमान पे मौत आएगी, अपने बारे में ये नजरिया होना चाहिए। ठीक है ना, तो फरमाया कि ऐसी ज़ात की जो कादर मुतलक है इस तरह हरकत पैदा करने बस कुदरत है, बड़े इल्म वाले की इसकी रफ्तार की मसलहतें और हिकमतें जानता है, इसलिए खास 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 तरह पर ठहरा दिया। और वो अल्लाह ऐसा है कि जिसने तुम्हारे फायदे के लिए सितारों को पैदा किया, और वो फायदा ये है कि ताकि तुम उनके जरिए से रात के अंधेरों में, खुश्की में भी और दरिया में भी रास्ता मालूम कर सको। बेशक हमने ये दलाइल तौहीद और इनाम के खूब खोल खोल कर बयान कर दिए हैं। قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون, और गो ये दलाइल पहुंचेंगे सबको, अल्लाह ताला हुज्जत तमाम करेंगे, अल्लाह ताला पहुंचाएंगे दलाइल को, ठीक है ना। अल्लाह ताला अपने बंदों को पहुंचाते हैं, चाहे किसी को भी वास्ता बना के पहुंचाएं, लेकिन अल्लाह ताला पहुंचाते हैं। हम तो इसलिए पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि अल्लाह ताला हमें कबूल कर लें और हमारे गुनाहों को माफ कर दें, हमारी मदद कर दें। इस वजह से हम दीन के मैसेज को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम नहीं पहुंचा सके तो क्या पहुंचेगा भी नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। अगर हम नहीं पहुंचा सके तो क्या अल्लाह भी नहीं पहुंचा सकता? नहीं, अल्लाह ने तो पहुंचाना है, अल्लाह ने तो पहुंचाना है। इसकी फिक्र ना करें कि अगर हमने नहीं पहुंचाया तो कोई भी नहीं पहुंचाएगा, भाई अल्लाह पहुंचाएगा। हम तो अपनी निजात के लिए इस फिक्र में लगे रहते हैं कि किसी तरह से हम पहुंचा दें, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है ना, वो वही फरमाया कि गो पहुंचेंगे सबको, क्योंकि अल्लाह पहुंचाने वाला है ना, मगर नाफे उन्हीं लोगों के लिए होंगे जो भले बुरे की कुछ खबर रखते हैं, यानी जिन्होंने थ्योरेटिकल इल्म जो है वो किसी, यानी किसी के सामने सबमिट करके और संजीदगी के साथ थ्योरेटिकल इल्म हासिल किया, बाकी जो है ना फिर अल्लाह ताला उनको बाकी तफसीलात भी अता फरमाएंगे, चाहे बिल वास्ता अता फरमाएं चाहे बिला वास्ता अता फरमाएं, अल्लाह ताला करेंगे ये काम, ठीक है। ये बात तर्जुमे में काफी तफसील से हो चुकी है, तो आगे चलते हैं कि क्योंकि गौर ऐसे ही लोग किया करते हैं, यानी किसी की बात पे आप गौर क्यों करते हैं? जब आप उसको किसी काबिल समझते हैं ना, उसी उसी की बात पर गौर करते हैं ना, वरना कोई छोटा सा बच्चा आपके सामने आके के ऊआ की आवाजें निकालना शुरू कर दे तो आप उस पर गौर करना शुरू हो जाएंगे कि ये ऊआ की आवाजें क्यों निकाल रहा है। नहीं, उस छोटे बच्चे की कोई अहमियत ही नहीं है आपकी निगाह में, तो आप उसकी बात पे तवज्जो नहीं देंगे, गौर व तदब्बर नहीं करेंगे। इसी तरीके से अल्लाह का रसूल भी जब आ जाते हैं ना काफिरों के सामने, जो जिद्दी काफिर होते हैं, ठीक है ना, तो अल्लाह के रसूल की भी बात को वो ऐसे ही इग्नोर करते हैं जैसे किसी छोटे बच्चे की ऊँ आ को इग्नोर करे कोई बंदा, क्योंकि अहमियत नहीं होती ना। तो अहमियत जो होती है ना वो असल चीज होती है, प्रायोरिटीज, इसको प्रायोरिटीज भी कहते हैं। आजकल की मॉडर्न मैनेजमेंट वाले बड़े फखर से जो है ना वो अपना मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बयान करते हैं, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है कि यू कैन नॉट प्रायोरिटाइज योर टाइम, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर, नहीं, यू कैन नॉट मैनेज योर टाइम, यू हैव टू मैनेज योर प्रायोरिटीज। नई चीज लेकर के आए गोया के, हैं पहले नहीं पता था किसी को, नहीं ये असल हकीकत है जो आपको आज जाके पता चली है, और ये कॉमन सेंस वाली बात है वैसे भी, ठीक है। तो भाई प्रायोरिटीज को मैनेज करना होता है, मतलब ये कि आपकी नंबर वन प्रायोरिटी क्या है, आपकी नंबर टू प्रायोरिटी क्या है, नंबर थ्री प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। जिसको आपने नंबर वन प्रायोरिटी बनाया है उसके लिए आप टाइम निकालेंगे, ये आपकी अल्लाह ताला ने नेचर बनाई है, ये तबीयत में आपके डाल दिया है, ये आपकी फितरत में डाल दिया है, ठीक है ना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, ये इंसान के कंट्रोल में नहीं है। जो फितरत होती है ना वो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। तो फितरत क्या है, जो भी प्रायोरिटी होगी उसके लिए आप वक्त निकालेंगे, ठीक है, कोशिश कम से कम करेंगे, हो सक बेशक फेल जरूर हो रहे होंगे, फेल होना अलग चीज हो, फेल तो उस वक्त होता है ना इंसान जब कोशिश करता है, ठीक है ना। फेल का भी एक डेफिनेशन है, व्हेन डू यू फेल इन समथिंग, व्हेन यू ट्राई टू डू इट, ठीक है ना। तो फिर दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जब आप किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं तो या तो आप कामयाब हो जाते हैं या आप नाकाम हो जाते हैं। तो नाकामी भी किस बात की अलामत है कि यू ट्राइड, आपने कोशिश करी थी, ठीक है ना। तो कोशिश किस चीज के लिए आप करते हैं, जिसको आप प्रायोरिटी देते हैं, उसके लिए आप कोशिश करते हैं। कामयाबी नाकामी ये उसके बाद की बात है ना, राइट? ये तो बाद की बात है, लेकिन जिस चीज को आप प्रायोरिटी नहीं देते, आप उसके लिए कोशिश ही नहीं करते। जब कोशिश ही नहीं करते तो नाकामयाबी ना नाकामी, नाकामयाबी इज अ पॉसिबिलिटी ना नाकामी इज अ पॉसिबिलिटी। तो प्रायोरिटाइज करना जो है ना, ये हमारे करने का काम, ये अल्लाह ताला ने हमारी जिम्मेदारी लगाई, ठीक है? फिर उसके बाद बाकी चीज फितरत पर है, फिर आप यू कैनॉट हेल्प एनी मोर, यू कैनॉट हेल्प इट एनी मोर। फिर उसके बाद जो है वो आप कोशिश करेंगे, जिसको आपने प्रायोरिटाइज कर लिया उसके लिए आप कोशिश करेंगे, वो भी आपके बस में नहीं है क्योंकि वो आपकी फितरत का हिस्सा है कि आप कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, कामयाबी या नाकामी, वो भी आपके बस में नहीं है, वो भी आपके बस में नहीं है। तो हमारे बस में क्या हुआ फिर, हमारे ट्रक में क्या हुआ, हमारे बस में क्या हुआ क्या हुआ? प्रायोरिटाइज करना, बस तरजीह देना, किसी चीज को आप तरजीह दे रहे हैं, किसी चीज को आप तरजीह नहीं दे रहे, ये हमारे बस में है। इसी को इख्तियार भी कहते हैं, इसी को इख्तियार भी कहते हैं, चॉइस भी कहते हैं, ठीक है ना? तो इंसान के बस में अल्लाह ने क्या चीज दी है, चॉइस, इख्तियार, टू डू व्हाट, टू प्रायोरिटाइज, दैट्स इट। हमारे बस में और कुछ भी नहीं है, हमारे बस में और कुछ भी नहीं है, बाकी सारे काम या तो हमारी फितरत का हिस्सा कहलाएंगे या फिर वो अल्लाह के डायरेक्ट कंट्रोल में है, अल्लाह के डायरेक्ट कंट्रोल में है, यानी रिजल्ट्स वो अल्लाह के डायरेक्ट कंट्रोल में है, फितरत वो अल्लाह ताला ने वदियत कर दी है हमारे अंदर, हमारे कंट्रोल में क्या है, चॉइस, इख्तियार, ठीक है? यानी तरजीह देना और ना तरजीह देना, ये हमारे कंट्रोल में अल्लाह ताला ने दिया है, ठीक है जी? तो फरमाते हैं कि और वो अल्लाह ऐसा है कि जिसने तुम सबको, यानी ये सारी बात क्यों हुई थी कि गौर ऐसे ही लोग करते हैं जो तरजीह देते हैं, खलास, ठीक है ना? यहां से बात शुरू हुई थी सारी की सारी। आगे फरमाते हैं कि और वो अल्लाह ऐसा है कि जिसने तुम सबको असल में एक शख्स से, कि आदम अलैहिस्सलाम है, पैदा किया, ठीक है? तो वहुवल्लदी जाला, नहीं, वहु अल्लदी अनशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन। अच्छा, एक सवाल आया हुआ है कि हाउ डज वन इंश्योर दैट अल्लाह ताला एंड आखिरत बिकम्स आवर प्रायोरिटी, वी कैन मेक नियत एंड दुआ बट फितरत टेक्स ओवर एंड अगेन माइंड वॉन्डर्स इन दुनिया, फितरत टेक्स ओवर एंड अगेन माइंड वॉन्डर्स इन दुनिया, हाउ डू वी इंश्योर दैट अल्लाह एंड आखिरत बिकम आवर प्रायोरिटी, वी कैन मेक नियत एंड दुआ बट फितरत टेक्स ओवर। हाउ डू वी इंश्योर, भाई आपने नियत कर ली कि मैंने अल्लाह और आखिरत को जो है ना वो अपनी प्रायोरिटी बनाना, नंबर वन प्रायोरिटी बनाना, ठीक है? आपने नियत कर ली, फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ भी कर दी, ठीक है, कि अल्लाह मैंने नियत तो कर ली है, आप जानते हैं मैंने नियत कर ली है कि आप ही को मैंने नंबर वन रखना है, और जाहिर है आखिरत का ताल्लुक भी आप ही के साथ है क्योंकि वहां पर ही आपका दीदार होगा, तो इस वजह से आखिरत भी नेचुरली, फिर इसका नतीजा ये है कि आखिरत भी मेरी नंबर वन प्रायोरिटी होगी, तो अल्लाह आप इसको बना भी दीजिए मेरी नंबर वन प्रायोरिटी, मैंने तो नियत कर लिया लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ, बस वो वही आप कह रहे हैं ना, फितरत टेक्स ओवर। तो नहीं, ये फितरत टेक्स ओवर वाला जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है ना, वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं इस्तेमाल किया जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? आपने इसको जो है वो उर्दू के मुहावरे में इस्तेमाल कर लिया कि हमारी फितरत ही खराब है, तो फितरत जो है ना वो गालिब आ जाती है, भाई हम उस फितरत की बात नहीं कर रहे थे, हम उसकी बात नहीं कर रहे थे, हम तो उसकी बात कर रहे थे जो अल्लाह ने बनाई है, ठीक है? आप किसकी बात कर रहे हैं, आप जो है वो असल में जो खवातीन ने सही जवाब दिया इसका, कि नफ्स टेक्स ओवर, ठीक है, नफ्स टेक्स ओवर, और नफ्स टेक ओवर कर लेता है तो फिर हमारी जो है ना वो सोचें अल्लाह से हट जाती हैं, आखिरत से हट जाती हैं, तो ये चीज हो जाती है ना, तो फिर हमारा जब नफ्स टेक ओवर कर लेता है तो फिर नफ्स तो फिर डिस्ट्रैक्टेड है ना, ठीक है, नफ्स तो फिर वो अमारा है या लवामा है, तो वो फिर इधर उधर उधर इधर, तो फिर वो आपके सवाल का आखिरी हिस्सा क्या है कि इट वॉन्डर्स इन दुनिया, आवर माइंड वॉन्डर्स इन दुनिया, क्योंकि नाउ नफ्स इज मैनेजिंग द माइंड, इज ड्राइविंग द माइंड, तो फिर वो नफ्स तो फिर क्योंकि खुद डिस्ट्रैक्टेड है, तो इस वजह से वो माइंड को भी डिस्ट्रैक्ट करता रहता है, ठीक है, घुमाता रहता है, फिराता रहता है। तो अब इसका क्या हल है? इसका हल जो है ना वो ये है कि नफ्स की जो है ना वो पिटाई लगाई जाए, नफ्स की पिटाई लगाई जाए ताकि वो दुबक करके बैठ जाए कोने में, तो कोने में दुबक के बैठ जाए। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो बच्चा जो है ना वो कमरे में जो है वो लोग बातें कर रहे हैं, वो बच्चा जो है वो मुस्तकिल कोई ना कोई तमाशे कर रहा है ताकि ये जो अंकल्स बैठे हुए कोई अच्छी बात कर रहे हैं, कोई अच्छी मुराकबा कर रहे हैं, वो ना कर सकें, उनको मुस्तकिल जो है ना वो बच्चा अपनी तरफ करे जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट करे चला जा रहा है, तो अब वो बैठ के कोई सही काम कर ही नहीं पा रहे, तो अब क्या करेंगे वो? तो बच्चे को जो है वो या तो डांटेंगे, बैठे हो आराम से, चुप होकर के बैठ जाओ, कोने में बैठ जाओ, खबरदार जो तुम वहां से उठे, और अगर डांट लगाने से वो बात नहीं मान रहा तो फिर उसको एक आध हाथ भी लगाना पड़ जाएगा शायद, ठीक है, ताकि वो दुबक के वाकई कोने में बैठ जाए। तो ये बच्चे, ये नफ्स जो है ना, ये बच्चा बच्चा ही है, ये हमें हर वक्त डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता रहता है, तो फिर इसको दबा करके, इसको दबाने के लिए फिर नफ्स के तस्किए भी, सॉरी जो शेख ने फिर कहा है जिक्र करने के लिए जिक्र करें, जो शेख ने जो है वो काम करने के लिए काम करें, शेख की डांटें खाएं, शेख की डांटें खाएं, और उसको अपने लिए अक्सीर समझें कि ये तो मेरी दवा है, इसी से तो मेरा नफ्स जो है ना फिर वो दुबक के बैठेगा, वरना वो मुझे माते ही रहेगा बस सारी जिंदगी। नियत, और यानी मैंने नियत भी कर ली, उससे भी मुझे फायदा नहीं हो रहा, दुआ भी बस फिर मेरी, इसका मतलब मेरी दुआ भी कोई ऐसी बात ही सही वाली दुआ नहीं है फिर मेरी, इस वजह से है ना फिर वो, तो ये होती इंस्टेड ऑफ फितरत में भी वी शुड से नफ्स टेक्स ओवर। जी, वो खवातीन माशाल्लाह ऑलरेडी ये बोल चुकी है। अच्छा, तो दुआ भी जरा ऐसे मांगे ना कि अल्लाह को भी फिर तरस आ जाए हमारे ऊपर, और वो फिर ग्रांट कर ही दे हमारी जो दिल की तमन्ना है ना वो अल्लाह हमें ग्रांट कर ही दे, ऐसे अल्लाह लटक जाए बंदा जिस तरह से ना फकीर है ना, वो कुछ फकीर ऐसे होते हैं वो ऐसा लटक जाते हैं कि बस उनसे जान छुड़ाने के लिए उनको देना ही पड़ जाता है ना, तो अल्लाह ताला तो खैर ऐसे नहीं है कि जान छुड़ाने के लिए हमें दे देंगे, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा देख रहे हैं कि हाँ भाई ये तो वाकई जो है ना ये इसने नहीं छोड़ना मुझे, तो उसको तो मुझे देना ही पड़ेगा इसकी इसकी जो चाहत है। अच्छा, और वो अल्लाह ऐसा है कि जिसने तुम सबको असल में एक शख्स से, ये आदम अलैहि सलाम है, पैदा किया, फिर आगे तो तवालदो तनासुल का इस तरह सिलसिला चला आ रहा है कि तुम में से हर शख्स के लिए मरतबा मादा में एक जगह ज्यादा रहने की है यानी माँ का रहम, और एक जगह चंदे चंदे यानी कुछ अरसा रहने की है यानी बाप की पुश्त, लिखावनी तआला मिन बैन अस-सुलबि वत-तराइब, जो सूरह तारिक है ना उसके अंदर जो ये है, यखरुजु मिन बैन अस-सुलबि वत-तराइब, तो बेशक हमने ये दलाइल भी तौहीद और इनाम के खूब खोल खोल कर बयान कर दिए हैं आम तौर पर, मगर उन यानी आम तौर पर हमने उनको खोल खोल कर बयान कर दिए हैं, सबके लिए आम है ये नॉलेज, मगर इनका नफा भी मिसले साबित उन्हीं लोगों के लिए होगा जो समझ बूझ रखते हैं। ये तफसील हो गई युखरिजुल हय्या से लेकर के आखिर तक की, युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति से लेकर के आखिर तक की ये सारी तफसील गोया अल्लाह ताला ने खुद ही तफसील बयान कर दी, फिर उसकी तफसीर जो है वो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने हमारे लिए बयान कर दी, क्योंकि हमें तफसीर के बगैर बात समझ में नहीं आएगी, उनके तो तफसील से ही बात समझ में आ गई जो अल्लाह ताला ने बयान करी थी, हमारे बात जो है वो तफसील की तफसीर से हमें इंशाअल्लाह बात समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह। तो ये हो गया सूरह नाम के इन आयात के खुलासे तफसीर। आगे चले मारूफ मसाइल में हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह जो अपनी तहकीक बयान करते हैं, तो उसमें फरमाते हैं कि पिछली आयात में कुफार मुशरिकीन की हट धर्मी और हकायक व नतायज से गफलत का तज़किरा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया था, फिर उसके बाद जो है वो उनकी हठ धर्मी का वाकया था, तस्करा था और गफलत का तस्करा, ये सब कुरान मजीद में अल्लाह ताला रिपीटेडली बयान करते रहते हैं। और इन सब खराबियों की असल बुनियाद खुदा ताला और उसके बेमिसाल इल्म व कुदरत से बेखबरी है। ठीक है, यानी जो हठधर्मी की और गफलत की जो असल वजह होती है ना, वो इल्म की कमी। ठीक है, इल्म की कमी। ठीक है, हमें इल्म नहीं अल्लाह ताला के इल्म के बारे में, हमें इल्म नहीं अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में, हमें इल्म नहीं। ठीक है ना, तो जिस चीज का आपको इल्म नहीं तो उस चीज की फिर अहमियत भी कम होती है। इस वजह से इल्म असल चीज, इल्म असल चीज, असल बुनियाद इल्म है। ठीक है, क्या मतलब नियत असल बुनियाद नहीं है भाई? यहाँ पे हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे, नियत वाली कॉन्टेक्स्ट में। नियत तो है असल बुनियाद, बिल्कुल, वो तो इल्म की भी असल बुनियाद नियत ही है। क्या मतलब कि भाई इल्म हासिल करना, तो भाई क्या नियत हो इल्म हासिल करने की? ताकि इल्म हासिल करने की नियत ये हो कि मुझे गफलत से बाहर निकलना है। ठीक है, मुझे वक्त जाया करना नहीं है, ये नियत हो। ठीक है ना, तो ये तो है बुनियाद, यानी ये तो क्या कहते हैं शायद वो कंस्ट्रक्शन में प्लिंथ कहते हैं ना, प्लिंथ, जो कि फाउंडेशन की भी नीचे जो पड़ती है ना उसको प्लिंथ कहते हैं शायद। तो नियत जो है वो प्लिंथ है, उसके ऊपर फाउंडेशन बन रही है। वो फाउंडेशन क्या है? इल्म है। ठीक है, और फिर इल्म के फाउंडेशन के ऊपर फिर जो इमारत बन रही है वो क्या है? अमल है। ठीक है, वो अमल है, वो इमारत बन गई। ठीक है, अच्छा, इमारत बनने के बाद यानी अमल भी हो गया, अब खत्म हो गया काम, मुकम्मल हो गया काम? नहीं, अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ काम, क्योंकि इमारत जो है ना वो बनती है ना, तो फिर जो अच्छे मुल्क होते हैं, सो कॉल्ड दुनियावी एतबार से जो अच्छे मुल्क होते हैं, सिस्टम्स वाले मुल्क होते हैं, तो वहां पे जब इमारत बन जाती है तो फिर उसको एक लाइसेंसिंग की भी जरूरत पड़ती है, अप्रूवल की भी जरूरत पड़ती है बिल्डिंग अथॉरिटी की तरफ से। ठीक है, वो लाइसेंस ना मिला ना कि इमारत आपने गलत बना दी थी, तो फिर वो गिरानी पड़ जाएगी। सही है, तो ये जो इमारत तो बना दी लेकिन नहीं, अभी भी एक और चीज की भी जरूरत है। वो क्या चीज है? अप्रूवल। वो अप्रूवल कैसे होगी, यानी कबूलियत कैसे होगी? वो इखलास से होगी। ठीक है, क्योंकि इखलास जो है ना, ये है तो नियत की बुनियाद पर, तो नियत तो आप सबसे पहले कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये नियत जो है ना, ये अदलती बदलती भी रहती है, अदलती बदलती भी रहती है। ठीक है, तो इस वजह से ये बाद में जाकर के जो है ना, वो अगर खराब हो गई थी तो फिर वो लाइसेंसिंग नहीं मिलेगी, अप्रूवल नहीं मिलेगी। ठीक है, नहीं, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला, इज इंट अप्रूवल बिफोर द बिल्डिंग? नहीं, वो तो होती है, यानी नियत बिफोर बिल्डिंग तो बात हो गई ना उसके ऊपर, नियत के ऊपर। ठीक है, लेकिन इखलास जो है ना, यानी ये जो नियत है ना, इट हैज टू कंटिन्यू ऑल द वे टू द एंड एज वेल। हम उस एंड वाली नियत की बात कर रहे हैं, यानी इब्तदा भी अच्छी हो लेकिन इंतहा भी अच्छी हो। ठीक है ना, इब्तदा भी अच्छी हो लेकिन इंतहा भी अच्छी हो, यानी बिल्डिंग बनाने के बाद भी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट कह दें आप इसको। ठीक है, अगर ये फिक्र ना रहे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट की फिक्र ना रहे कि हाँ भाई इनिशियल तो मैंने ले लिया था ना सर्टिफिकेट, मैंने बिल्डिंग अप्रूव करवा दी थी, तो फिर क्या होगा? कंप्लीशन सर्टिफिकेट की फिक्र ही नहीं, तो फिर क्या होगा? वैसे तो कुछ भी नहीं होता अगर शैतान ना होता। अगर शैतान ना होता तो फिर तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन शैतान है। इसका इनकार करेंगे तो काफिर हो जाएंगे, अगर शैतान का इनकार करेंगे। एक तो होता है ना, अल्लाह का इनकार करने से काफिर हो जाएंगे, ये तो हमें सबको पता है, लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं या हमें भुला दी जाती है कि शैतान का इनकार करना भी काफिर बना देता है। क्यों? इसलिए कि शैतान तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने हर जगह जिक्र किया शैतान का। ठीक है ना, मजे की बात, इबरत की बात यह है कि हम शैतान का इनकार करते रहते हैं, तो भाई शैतान तो है ना। तो अब शैतान जो है वो खाली इब्तिदा में तो नहीं नियत खराब करता, वो तो इंतहा में भी नियत खराब करता है ना। तो अगर इंतहा की से बेफिक्री हो गई तो फिर शैतान ने आकर के कंप्लीशन सर्टिफिकेट से महरूम कर दिया। ठीक है ना, इन्नमल आमालु बिल खवातीन, अंग्रेजी में भी किसी ने लिख के दिया, ने लिखा था, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बगैर इवन इब्तदाई नियत का भी फिर फायदा नहीं होगा। ये फिक्र और ये परेशानी जो है ना वो ईमान वालों को लगी रहती है। तो हजरत अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह का वाकया हजरत बयान किया करते हैं, अभी सरदार साहब ने भी बयान किया, ये मौत के वक्त जो है ना वो शैतान आकर के कहता है उनसे कि अहमद बिन हम्बल तू अपना ईमान मुझसे बचा गया, तू अपना ईमान मुझसे बचा गया। उन्होंने जवाब दिया, ला ला ना, नहीं, जब तक मेरी मौत नहीं आ जाती है ना उस वक्त मैं तुझसे महफूज नहीं हो सकता। ठीक है, मारिफ व मसाइल में फिर क्या था कि हाँ ये इल्म कुदरत, ठीक है, तो अल्लाह ताला के इल्म का इल्म और अल्लाह ताला की कुदरत से बेखबरी, तो ये बेखबरी का इलाज क्या है, इल्म हासिल करना। ठीक है, तो हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, हमें इल्म हासिल करना चाहिए। मैं आलिमा और आलिम कोर्स करने की बात नहीं कर रहा, वो अगर आपका शेख साहब आपको कहते हैं आलिम आलिमा कोर्स करने के लिए तो वो भी करें, लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं कुछ और करें तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन इल्म हासिल का ताल्लुक जो है ना वो ये नहीं है कि नहीं आलिम कोर्स करूंगा तभी इल्म हासिल होगा, वरना तो मैंने जाहिल रहना है, वरना तो मैंने बात ही नहीं सुननी है, वरना तो मैंने कोई चीज नहीं पढ़नी है, वरना तो मैंने जो है वो यानी अपना वक्त जाया करना है। नहीं, इल्म हासिल करना है, हर वक्त इल्म हासिल करना है, हर लम्हे इल्म हासिल करना है। ठीक है, और अल्लाह की रजा की नियत से और अल्लाह की मारिफत की हासिल करने की नियत से इल्म हासिल करना है। ठीक है, इन्होंने जवाब दिया, इन्होंने लिखा है कि नियत की चौकीदारी करनी पड़ती है इमारत की हिफाजत के लिए। बिल्कुल सही कहा, यानी आमाल की हिफाजत के लिए नियत की चौकीदारी करनी पड़ती है। अच्छा, तो ये बेखबरी की बात हो गई, इसके आगे फरमाते हैं कि इसलिए मज़कूरा चार आयात में हफ्ता आला ने गाफिल इंसान के इस रोग का इलाज इस तरह फरमाया है कि अपने वसीउ इल्म और अजीम कुदरत के चंद नमूने और इंसान पर अपने इनामात व एहसानात का एक सिलसिला जिक्र फरमाया, ठीक है, जिसमें अदना गौर करने से हर सलीमुल फितरत इंसान खालिक कायनात की अजमत और बेमिसाल कुदरत का और इस बात का कायल हुए बगैर नहीं रह सकता कि ये अजीम शान कारनामे सारी कायनात में सिवाय खुदा तआला के किसी कुदरत में नहीं। ठीक है, देखें अल्लाह ताला अपने कलाम में, अपने कुरान मजीद में बार बार, अच्छा ये आज तो आज सुबह फजर की नमाज पढ़ रहे थे ना इमाम साहब की तिलावत, तो उसमें कौन सी वाली आयत पढ़ी आज उन्होंने, लेकिन ये वाली आयत जो है वो अब तरावी में तो माशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से बहुत पूरा कुरान मजीद सुना, तो जगह जगह ये वाली आयत वल्लाहु ला यहदी वल्लाहु ला यहदी, अब जुमे में भी पढ़ी थी ये वाली आयत, कौमल फासिकीन, क्या है भाई साहब कुछ ला यहदी कौमल फासिकीन, ठीक है ना, तो ये कौम ज़ालिमीन भी कई दफा कुरान मजीद में आता है और कौम फासिकीन भी कई दफा कुरान मजीद में आता है। ठीक है ना, सूरह अभी मुनाफिकून की तिलावत करी थी जुमे के दूसरी रकत के अंदर, ठीक है ना, तो अब ये एक जहन में एक तालिबे इल्माना सवाल आता है, आना चाहिए कि भाई अल्लाह का कुरान तो इतना मुख्तसर है और अल्लाह का कुरान तो बहुत ही यानी गोया के बहुत ही कम अल्फाज है ना उसके अंदर, तो अब उसके अंदर जो ये रिपीटेशन हो रही है तो रिपीटेशन से तो ऐसा लगता है कि गोया के नाउज बिल्ला आप स्पेस जाया कर रहे हैं, आप अल्फाज जाया कर रहे हैं, आप उन्हीं अल्फाज में जो कि जैसे अगर आपने मिसाल के तौर पर हम जिस तरह से बात सोचते हैं, हम जिस तरह सोचते हैं कि भाई अगर आपने पहले से डिसाइड किया होता कि मैंने किताब बनानी है जिस किताब के अंदर बस 300 सफे होंगे, तो अब उन 300 सफ़ों के अंदर तो आपको चाहिए था कि आप नई नई बातें लिखते, राइट, ताकि पढ़ने वालों को ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल हो जाता। इसको अंग्रेजी में मैक्सिमाइज करना भी कहते हैं, मैक्सिमाइज करना है ना भाई, कम से कम वक्त में आप ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर लें, कम से कम अल्फाज के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है वो अपने रीडर को कम्युनिकेट कर दें। अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद के अंदर रिपिटिशन आफ्टर रिपिटिशन आफ्टर रिपिटिशन रिपीट करे चले जा रहे, रिपीट करे चले जा रहे हैं। ठीक है ना, क्या कोई इंसान ऐसा काम करेगा कभी कि वो अपनी किताब के अंदर एक ही बात को रिपीट किए चले जा रहे हैं, एक ही बात को रिपीट किया, तो भाई पढ़ने वाला तो कहेगा ना कि यार ये तो क्या बात है, ये तो मुस्तकिल की रिपिटेशन हो रही है, मैंने तो इल्म के लिए किताब पढ़ी थी, इसमें तो पुरानी बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। इंसान कोई ऐसे नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? और अल्लाह ताला ने ऐसे किया तो क्यों किया? ठीक है ना, ये एक सवाल बनता है, अल्लाह ने ऐसे किया तो क्यों किया, इंसान ऐसा नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? ठीक है, इसका जवाब जो है ना वो पहली क्लास में था, पहली रमजान मुबारक को जो क्लास हुई थी ना उसमें इसका जवाब था, अल्लाह ताला ने कुदरतन अभी मुझे याद दिला दिया। ठीक है, फदक्किर फइन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन, ये तो कुरान मजीद, ये तो आप एकदम दूसरे लेवल की बात कर रहे हैं ना, कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है फदक्किर फइन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन। ठीक है भाई, ये तो हमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसूल बना दिया ना, हम तो बात कर रहे हैं अल्लाह ताला ने अपने लिए उसूल क्यों नहीं बनाया, जब इल्म की बात कर रहे हैं कि भाई इल्म से फायदा होता है, इल्म से फायदा होता है, इल्म से फायदा होता है, इल्म से अल्लाह की कुदरत का भी पता चलता है, इल्म से अल्लाह की अजमत का भी पता चलता है। तो अब यहाँ पे जैसे ये बातें हुई ना, इन अल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित मुखरिजुल मय्यित, भाई इससे अल्लाह ताला के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, अल्लाह ताला की शान पता चल रही है। तो भाई इस मुख्तसर से कुरान के अंदर अल्लाह ताला को सिर्फ अपनी नई 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 शान बयान करनी चाहिए थी, है ना भाई, हर लफ्ज में अल्लाह ताला की नई शान होनी चाहिए थी। रिपीटेशन का मतलब तो ये हो गया ना कि बस जो पुरानी शान थी वही लोग आपने दोबारा रिपीट कर दी, या पुराने जो एक बात आप पहले बता चुके थे कि भाई मैं फासिकों को हिदायत नहीं देता, वो तो पहले बता चुके हैं, अब कोई नई बात बताए ना, पुरानी बातें क्यों बताए चले जा रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं, हम आप बिल्कुल डिफरेंट लेवल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया अल्लाह ताला ने? ठीक है, और कोई इंसान अगर अपनी किताब लिखता है तो वो ऐसा काम क्यों नहीं करता? पहली क्लास में ही बात हुई थी, अब जाहिर है मैं आपसे तवक्को भी नहीं रखता कि आपको पहली क्लास की बातें याद होंगी, तो बहरहाल याद उस खुद ही बता देता है कि भाई पहली क्लास में ये बात हुई थी कि कोई भी इंसान हो या जिन हो या इवन फरिश्ता हो, अगर वो कोई किताब लिखता है, ठीक है, तो वो किताब तो लिख देता है अपनी नॉलेज के हिसाब से, जो उसकी नॉलेज है, जितनी उसकी नॉलेज है उसके हिसाब से वो किताब लिख देता है, ठीक है ना, तो वो किताब के कंटेंट को तो एक हद तक कंट्रोल करता है, क्या कंटेंट लिखना है किताब में वो तो कंट्रोल करता है ना ऑथर ऑफ द बुक, लेकिन क्या वो रीडर को कंट्रोल कर सकता है? क्या वो रीडर को कंट्रोल कर सकता है? क्या वो रीडर के अहवाल को कंट्रोल कर सकता है? क्या वो रीडर की सोच को कंट्रोल कर सकता है? और क्या उसको ये इल्म होता है कि जब रीडर मेरी किताब पढ़ेगा तो उस वक्त उसके ऊपर क्या हालात आ रहे होंगे, और वो किस सोच से मेरी किताब पढ़ेगा, और उसको पढ़ने से क्या फायदा होगा, क्या वो ये बात कंट्रोल कर सकता है? नहीं, कोई भी ऑथर ये नहीं कर सकता, वो अपनी किताब के कंटेंट को कंट्रोल कर सकता है, किताब की बनावट को कंट्रोल कर सकता है, राइट, लेकिन वो किताब पढ़ने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत कैसी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो पढ़ने वाले को भी जानता है, और उसको कंट्रोल करने का लफ्ज मैंने खाली इस्तेमाल किया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत और अल्लाह का इल्म ऐसा है कि वो पढ़ने वाले को जानता भी है हर लिहाज से, हर तरह उसके तमाम अहवाल को भी जानता है, और वो अल्लाह ताला उसके जहन में तौफीकें भी अपने कंट्रोल से डालता है, अपनी कुदरत से डालता है। तो अब ये जो है ना, वल्लाहु ला यहदिल कौम अल फासिकीन ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, या जो जितनी भी रिपीटेशंस हैं, तो इन रिपीटेशंस से पढ़ने वाले का कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, उसको फायदा ही हो रहा होता है, अगर उसकी नीयत जो है वो इल्म हासिल करने की और अल्लाह को पहचानने की, जानने की है, क्योंकि अल्लाह ताला इन अल्फाज के जरिए से, अपने कलाम के जरिए से उसको फायदे पे फायदा ही पहुंचा रहे होते हैं, ना सिर्फ सवाब पहुंचा रहे होते हैं बल्कि उसके इल्म और उसके मारिफत के अंदर भी इजाफा कर रहे हो, उसके इल्म और उसके मारिफत के अंदर भी इजाफा कर रहे हो। अल्लाह ताला कोई इंसान नहीं है, कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है अल्लाह ताला, राइट, अल्लाह ताला कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई मैसेंजर नहीं है, कोई शेख नहीं है, कोई कोई पीर साहब नहीं है, अल्लाह ताला कोई स्कॉलर नहीं है, कोई साइंसदान नहीं है, जिसके पास बड़ा इल्म होता है लेकिन उसके पास कुदरत नहीं होती है। इल्म हासिल कर लिया, कुदरत नहीं है उसके पास, और कम से कम लीडर के लिए तो कोई कुदरत नहीं है उसके पास। ठीक है भाई, अल्लाह को मानना समझना जो है ना, ये काश अगर ये हमें आ जाए ना, तो ये जो पीछे भी किसी ने सवाल किया था ना, हमारा दिमाग वॉन्डर करता रहता है, नफ्स टेक ओवर कर लेता है भाई, ये भी हमारी जहालत की वजह से ही होता है। हमने अल्लाह को मा कदरुल्लाह हक कदरी, हमने अल्लाह की कदर नहीं करी। हम मखलूक की, कहते हैं ना वो उर्दू में एक मुहावरा है, तुम में घुसे रहना, तुम में घुसे रहना मखलूक की, हम मखलूक की तुम में घुसे रहते। तुम में घुसे रहने का मतलब ये होता है कि आप उसका पीछे लगे रहें, आप उसका पीछा ही ना छोड़ें मखलूक का। अल्लाह की कदर नहीं करी, अल्लाह के पीछे नहीं पड़े हम, ठीक है ना। तो असल वजह यही होती है, हम मखलूक के पीछे पड़े रहते हैं। बुरा हुआ हमारे साथ मखलूक के पीछे पड़े हुए, उस मखलूक ने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरी कदर क्यों नहीं करी, उसने मेरे साथ जो है वो मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं किया, उसने इस बात का ख्याल क्यों नहीं किया। उसी में बुरा होता है हमारे साथ, हम मखलूक के पीछे, अच्छा होता है हमारे साथ फिर भी हम मखलूक के पीछे, उसने मेरे साथ इतना अच्छा कर दिया, उसकी वजह से मेरे साथ अच्छा हो गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है, मखलूक के पीछे। अल्लाह क्यों नहीं आता तुम्हारे दिमाग के अंदर, अल्लाह तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आता कि जो अच्छा हुआ मेरे साथ वो अल्लाह ने किया, बेशक किसी को वसीला बना करके किया, लेकिन जो बुरा हुआ मेरे साथ वो भी अल्लाह ही ने किया, बेशक किसी को सबब बना करके किया। अल्लाह क्यों नहीं आता जहन के अंदर, क्योंकि अल्लाह को इस काबिल नहीं समझते, अल्लाह की कदर नहीं करते, अल्लाह की कदर नहीं करते इस वजह से। ठीक है, तो अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करें ना, तो फिर अल्लाह की कदर आएगी। मखलूक के बारे में तो बहुत इल्म हासिल कर लिया, हत्ता कि पीरों के बारे में भी बहुत इल्म हासिल कर लिया, ठीक है ना। पीरों के मुआजात, तो पीरों के जो है वो करामात, तो पीरों ने ये कर दिया, तो पीरों ने वो कर दिया, अल्लाह के बारे में कब इल्म। भाई हम पीरों को इसलिए नहीं कह रहे कि भाई आपको उलमा के और मशाइख के जो है वाकयात नहीं पढ़ने चाहिए, वो तो नेक लोग थे, उनके वाकयात पढ़ने चाहिए, लेकिन मकसद क्या है उनके वाकयात पढ़ने का, उनमें गुम हो जाना मकसद नहीं है, अल्लाह में अल्लाह तक पहुंचना मकसद है, पीर साहब तक पहुंचना मकसद नहीं है। मकसद ये बात कहने का सिर्फ इसलिए है कि भाई अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को अपना बना लो। पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी वो अपना बनाने के लिए नहीं गए दुनिया में आकर के, मेहनत करी थी उन्होंने कि सब उनके बन जाएं, नहीं, उन्होंने अल्लाह का बनाने के लिए मेहनत करी थी। अगर हम अल्लाह के ना बने तो गोया कि हमने अपने शेख को नाकाम कर दिया, हमने अपने शेख की मेहनतों पर पानी फेर दिया, हमने अपने शेख की भी कदर ना करी, अल्लाह की क्या कदर करते हैं। अगर हम अल्लाह के ना बन सके, अभी भी मखलूक के दुम में घुसे हुए हैं, ये है हमारी मुसीबत। क्या लिखा था उन्होंने, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हाउ इंपॉर्टेंट दिस पार्ट इज टू पॉन्डर ओवर व्हेन सिमिलर थिंग इज रिटन मेनी टाइम्स इन सच अ मोस्ट कॉम्पैक्ट बुक। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली आयत में शाह फरमाया कि इन्नल्लाह खालिकुल हब्बि वन्नवा, यानी अल्लाह ताला फाड़ने वाला है दाने को और घुटनियों को। इसमें कुदरत का एक हैरत अंगेज करिश्मा बतलाया गया है कि खुश्क दाना और खुश्क घुटनी को फाड़ कर उसके अंदर से हरा भरा दरख्त निकाल देना सिर्फ उसी जाते पाक का फेल है जो खालिक कायनात है। इंसान के सही और अमल को इसमें कोई दखल नहीं है। काश्कार की सारी कोशिशों का हासिल इससे जायद नहीं होता कि दाना और घुटनी के अंदर से जो नाजुक कोपल कुदरत खुदाबंदी ने निकाली है उसकी राह से मवाने और मुजर चीजों को दूर कर दे। इससे ज्यादा इंसान क्या कर सकता है कि गुटली को खराब करने वाली जो चीजें हैं ना, उनको उनसे गुटली को बचा ले, और जो है वो कोई रास्ते की रुकावट हो उसको दूर कर दे, जमीन को हल वगैरह के जरिए से नरम कर दे। ये इंसान कर लेता है, किसान साहब ये काम कर लेते हैं। फिर खाद डालना, पानी डालना, ये सब आमाल का असर ज्यादा से ज्यादा यही है ना कि निकलने निकलने वाली नाजुक कूंपल की राह में कोई रुकावट बाकी ना रहे। अगर सख्त पथरीली जमीन होगी तो उसको फाड़ करके बीज के लिए निकलना मुश्किल होगा, अगरचे के अल्लाह ताला चाहते हैं तो पथरीली जमीन से भी जो है वो बीज निकल आता है, लेकिन ना उन्हीं तौर पर ऐसा नहीं होता, तो जैसे हल चलाया जाता है ना, ठीक है, और पानी भी डाला जाता है और सूरज की रोशनी का भी इंतजाम कर लिया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा क्या बाकी असल काम के दाना और घुटली फटे और उसके अंदर से दरख्त की कूपल निकले और फिर उसमें रंग बरंग के अजीब व गरीब पत्ते और फिर ऐसे फल फूल लगे कि इंसान की अक्ल व दिमाग उसका एक पत्ता या एक पंखड़ी बनाने से आजिज है, इसमें जाहिर है कि किसी इंसानी अमल को दखल नहीं है। इसीलिए कुरान में दूसरी जगह इरशाद फरमाया, अफराई तुम मा तहरुसून व अंतुम तजरऊनहू अम नहनु ज़ारिउन, तो क्या तुम उन दानों को नहीं देखते कि जिनको तुम मिट्टी में डाल देते हो, कि क्या उनको तुमने बोया और बनाया है या हमने? ठीक है, ये बात हजरत ने फरमाई और बहुत सही फरमाई, बिल्कुल सही फरमाई, लेकिन इस बात की वैल्यू भी कितनी है? ये बात जो एक पैराग्राफ पढ़ा समझ में आ गया सबको, उर्दू जुबान में पढ़ा आपने भी शायद पढ़ लिया होगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ भी होगा आपके सामने, आपने भी पढ़ लिया, समझ में आ गया, कोई इनकार कर सकता है इसका? हाँ, इसका इनकार करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ये बात हजरत ने लिखी है बिल्कुल सही, लेकिन इनकार करने वाले भी बहुत हैं। इस बात की हैसियत बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने खुलासे तफसीर में पढ़ी थी। क्या बात थी खुलासे तफसीर में? हमने खुलासे तफसीर में पढ़ा था कि उसने रात को राहत की चीज बनाई है कि सब थके थकाए सोकर आराम पाते हैं। क्या वाकई आराम पाते हैं थक थका करके सो करके? नहीं पाते तो नहीं है, क्यों क्यों नहीं पाते, जल्दी से बताएं क्यों नहीं पाते भाई? हालांकि अल्लाह ने तो रात आराम के लिए बनाई थी, मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने या हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने लिख भी दिया कि भाई लोग थक को आराम पाते हैं रात को, लेकिन आज के दौर में आराम पाते हैं कि नहीं पाते? नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? इसलिए कि निजाम बदल दिया, अब रात को नहीं सो रहे होते आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से, अब सारा काम जो है वो लोगों का शाम को शुरू होता है और रात गए तक चलता रहता है और जो है वो सोते ही नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अल्लाह का निजाम तो ऐसा नहीं था ना, अल्लाह के निजाम को तोड़ करके खराब करके, एक महदूद इंसान अल्लाह ताला का पूरा निजाम खराब नहीं कर सकता, लेकिन एक महदूद स्फेयर के अंदर खराब कर दिया, और उससे नुकसान किसका हुआ? इंसान का अपना नुकसान हुआ, ठीक है, बिल्कुल यही बात नहीं, यही बात बिल्कुल जो है वो यहां पर भी अप्लाई होती है, जो हजरत मुफ्ती शफीराम तो ने लिखा ना कि इसमें जाहिर है कि किसी इंसानी अमल को दखल नहीं, या बल्कि इससे पीछे कि फिर ऐसे फल फूल लगेंगे कि इंसान की अकल और दिमाग इसका एक पत्ता या एक पंखड़ी बनाने से आजिज है, इसमें जाहिर है कि किसी इंसानी अमल को दखल नहीं, इसीलिए कुरान में दूसरी जगह इरशाद फरमाया ऐसे, ठीक है ना? लेकिन आज के दौर में जेनेटिक इंजीनियरिंग, पता है ना सबको जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, और साइंस की तरक्कियां, उसके अलावा दूसरी भी तरक्कियां, तो अब ये साइंस की तरक्कियां किस निजाम में रहते हुए? काफिर के निजाम में रहते हुए। जब हम साइंस की तरक्कियां पढ़ते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो फिर मौलवी साहब की ये बातें तो वैसे तो अगर सुने भी तो भी हम उनको हंसी मजाक में ही टाल देंगे, लेकिन सुनने की नौबत ही नहीं आती, पढ़ने की नौबत ही नहीं आती, क्यों? इसलिए कि साइंस, साइंस की तरक्की, इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग और फलानी इंजीनियरिंग और फलानी डिस्कवरीज और फलानी एडवांसेस, तो कुरान मजीद को पढ़ते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, क्यों? इसलिए कि आपने भी अपना निजाम बदल दिया, तालीमी निजाम कहाँ का, काफिर का बनाया हुआ तालीमी निजाम। साइंस तो भाई हम कई बार ये बात कर चुके हैं, ये जो ताजमहल बनाया था किसने बनाया था? मुसलमानों ने बनाया था ना, ये जो कोर्डोबा के अंदर जो इतनी सारी और चीजें बनाई थी और पता नहीं क्या क्या चीजें जो मुसलमानों ने इजाद भी करी थी, वो क्या मुराकबा करके इजाद करी थी? तस्बीहात पढ़ करके क्या वो इजाद हो गई थी? वो ताजमहल क्या तस्बीह पढ़ना शुरू किया था तो जिन्होंने आके ताजमहल बना दिया था? नहीं, जिन्होंने आके ताजमहल नहीं बनाया था, फरिश्तों ने आके ताजमहल नहीं बनाया था कि मुसलमान बैठा तस्बीह पढ़ा था और ताज, नहीं, वो साइंस के जरिए से बनाया था उन्होंने, लेकिन वो जो साइंस पढ़ता था मुसलमान, वो काफिर की साइंस नहीं होती थी,
वो मुसलमान की एजुकेशन सिस्टम के अंदर रहते हुए साइंस पढ़ता था, और उसमें प्रायोरिटी जो है वो कुरान और सुन्नत को दी जाती थी, और फिर उसके बाद साइंस की बारी आती थी। तो साइंस के खिलाफ होना मकसद नहीं है, राइट? मुशाहिदे के खिलाफ होना, डिस्कवरीज के खिलाफ होना, एडवांसमेंट्स के खिलाफ होना कोई मकसद नहीं है, बिल्कुल हम ये बात नहीं कर रहे। काफिर का निजाम जो कि अल्लाह का इनकार करता है, जो कि रसूल का इनकार करता है, जो कि फरिश्तों का इनकार करता है, उसके निजाम में रह करके जब आप साइंस पढ़ते हैं, तो फिर ये सारी बातें जो हैं, पहली बात तो आप उनको पढ़ते ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं होता आपके पास कि नाउज बिल्ला इन फजूल बातों को आप पढ़ें, टाइम ही नहीं कोई बचता आपके पास। 24 घंटे तो होते हैं ना सारा साइंस पढ़ने में, जब लगा दिया तो फिर कुरान का कहां से वक्त आएगा, समझने का वक्त आया, रट्टू करने का तो वक्त आ जाएगा, या तिलावत करने का तो शायद कोई ना कोई वक्त निकाल लेंगे। अल्लाह के कलाम को समझने का, अल्लाह की अजमत को जानने और पहचानने का वक्त तो आपके पास नहीं निकल सकेगा। और दूसरी बात यह कि अगर आपका जहन वहां से बन गया, तो अब जब ये बातें अगर आप पढ़ भी लेंगे, या अगर कोई आपको बता भी देगा, तो आप इनको हंसी मजाक में उड़ा देंगे, राइट? इग्नोर कर देंगे, यार ये किस जमाने की बातें कर रहे हैं आप, आज साइंस ने तरक्की करी है। देखें एक खबर हमारे दोस्त ने हमारे साथ शेयर करी थी, है? एक खबर पाकिस्तान के उर्दू अखबार में, लिखने वाला भी कोई मुसलमान नाम का बंदा था, उसने क्या लिखा कि इंतहाई लागिर बच्चे को, जिसका वजन जो था ना वो साबुन के टिकिया के बराबर उसका वजन था, उसके पैदाइश हुई, इतना छोटा पैदा हो गया वो बच्चा, ठीक है, साइंस ने बचा लिया। क्या लिखा उस बंदे ने, साइंस ने बचा लिया। और क्या लिखा कि डॉक्टरों ने अंथक मेहनत करके माँ को औलाद, डॉक्टर अंथक मेहनत करके माँ को औलाद की नेमत देने में कामयाब हो गए। अल्फाज देखें आप, माँ को औलाद की नेमत देने में कौन कामयाब हो गए, डॉक्टर कामयाब हो गए। अभी तो वो ये लिख रहे हैं कि अंथक मेहनत करके कामयाब हुए ना, जब दज्जाल का जहूर हो जाएगा ना, ठीक है ना, जो कि पता नहीं कितने दिन रह गए हैं इसके अंदर, अप्रैल में तो वो आर्टिफिशियल लाइट्स लॉन्च होने वाली हैं कल, जो किसी ने बताया था आपने से, पता नहीं कितने दिन रह गए हैं, जब दज्जाल का जहूर हो जाएगा ना, तो उस वक्त क्या पता चलता है हमें हदीस मुबारक से कि दज्जाल जो है वो बजाहिर एक बंदे को कत्ल कर देगा, मार देगा, चीर देगा, और फिर उसको जिंदा कर देगा, फिर से उसको जिंदा कर देगा। कैसे करेगा? अब या तो दो उसकी चीजें हैं, मौलवी साहब तो कहते हैं जी दज्जाल को इस्तिदराज नसीब होगा, इस वजह से वो काम करेगा, यानी करामत के जरिए से वो काम कर देगा, करामत के जरिए से वो काम करेगा कि बंदे को मारने के बाद उसको जिंदा कर देगा, ठीक है ना, यानी जिसको जाहिर काफिर होगा तो उसको करामत कहा नहीं जाएगा, उसको इस्तिदराज कहा जाएगा कि उसको इस्तिदराज नसीब होगा, इस वजह से वो जिंदा कर देगा। लेकिन अगर आप इस वक्त की मॉडर्न साइंस को देखें, सेल ग्रोथ, ह्यूमन सेल ग्रोथ जो हो रही है वो अब एआई के जरिए से ग्रोथ कर रहे हैं, ह्यूमन सेल्स इतनी तेजी के साथ एक रोबोट जो है ना वो ग्रो कर रहा है, कि जिससे लगता ये है कि ये एन मुमकिन है कि कुछ दिनों के बाद ये बॉडी को दो टुकड़ों में काटने के बाद भी जो है ना वो उसको ऐसे जोड़ देंगे कि रूह जो है वो परवाज नहीं करेगी, इतनी तेजी से करेंगे या क्या किस तरीके से करेंगे के बजाहिर लगेगा ये बंदा तो खत्म हो गया, लेकिन वो मरेगा नहीं, अल्लाह आलम ये कैसे होगा, लेकिन इतनी ज्यादा साइंस जो है वो तरक्की कर रही है। लेकिन अब जो इस निजाम में चला गया, अब उसका दिमाग तो बन गया ना कि भाई अजमत तो सारी की सारी साइंस में, और वो साइंस किसने करी, इंसान ने करी, ठीक है, और इंसान जो है वो कादिर हो गया, नौज़ बिल्ला कादर मुतलक भी जो है वो बनना शुरू हो गया। तो अब तो इसी वजह से जो इस निजाम में चले जाते हैं ना, अब वो इसके कायल हो जाते हैं, क्योंकि दिस इज हाउ इट्स सपोज टू बी। इसी वजह से अपनी औलादों को हमें इस निजाम से ही बचाना है। ये बेवकूफी की बातें जो लोग करते हैं ना कि नहीं कुछ नहीं होता, बस वहां से जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ेंगे, जहन तो नहीं बनेगा उनका वहां पर, तो भाई तुम जहन बनाने की कोई मेहनत करोगे तब तुम अपने मर्जी, अपनी यानी अल्लाह की मर्जी का जहन तब बनेगा ना। लेकिन वहां पर जो मेहनत जहन बनाने की होती है वो इतनी ज्यादा होती है और तुम्हारी मेहनत इतनी कम होती है कि ऑटोमेटिकली दे टेक ओवर। ठीक है, तो फिर तो अल्लाह की अजमत वगैरह तो सब आप बकते रहेंगे, फिर उसके बाद आपकी औलाद ने जो है वो उसको नहीं मानना है, नहीं सुनना है इन बातों को। तो नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जो है ना वो उसवाए हसना लेकर के आए थे, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना। हमने उसवाए हसना को किस चीज में महसूर कर दिया? नबी अलैहिस्सलाम की लंबी सी दाढ़ी होती थी, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो मिसवाक किया करते थे, ठीक है ना, और नबी अलैहिस्सलाम जो है वो सीधा पांव जो है वो मस्जिद में डाला करते थे, उल्टा पांव जो है वो बैतुलखला में डाला करते थे, और नबी अलैहिस्सलाम जो है वो ये किया करते थे वो किया करते थे। तो उसवा हसना मुकम्मल हो गया, खलास, वी आर डन विद उसवा हसना, राइट, वी आर डन विद उसवा हसना। ये उसवा हसना हमने, ये जाहिरी जो सुन्नतें हैं उनको हमने सीख लिया सुन्नत की किताबों में से, एंड खलास, अब जो है वो बाकी इल्म जो है ना वो तो हमने काफिर से हासिल करना है, बाकी इल्म जो है हमने काफिर के निजाम से हासिल करना है। ठीक है, ये हमने नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो किया हुआ है ना ये उसकी सजा है, कि उसवे हसना को चंद जाहिरी सुन्नतों में, जो कि एक एक सुन्नत अहम है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मिसवाक की सुन्नत गैर अहम है या लिबास की सुन्नत गैर अहम है, हरगिज नहीं, हरगिज वो गैर अहम नहीं है, लेकिन जो तालीमी निजाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लेके आए थे उसको तो तुमने बिल्कुल खड्डे में डाल दिया ना। और ये नहीं कि गोरों ने आके खड्डे में डाला था, खुद तुमने खड्डे में डाला है, खुद हिंदुस्तानी पाकिस्तानी सो कॉल्ड मुसलमान ने उसको खड्डे में डाला है। जब ये लॉर्ड मैकॉले जब आया ना मनहूस यहां पर, तो उसने क्या लिखा कि वी आर ए बोर्ड फॉर वेस्टिंग द पब्लिक मनी। वो एक तालीमी बोर्ड, अब बरतानिया ने तालीमी बोर्ड बनाया था और वो ये उसको उसका मिनिस्टर बनाया था, तालीमी मिनिस्टर, राइट, एजुकेशन मिनिस्टर। तो आके क्या उसने यहाँ पे स्टडी किया कि भाई यहाँ पे बरेसगीर के अंदर जो है ना इंडिया पाकिस्तान का जो पूरा एरिया, हिंद का जो एरिया है, तो यहाँ पे हम तालीमी निजाम कैसे लेकर के आए। तो उसने फिर पूरा स्टडी करने के बाद अपने बड़ों को लिखा कि हम तो अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं उन किताबों को छाप करके, कि जिन किताबों की कोई हैसियत ही नहीं है उसके नजदीक, यानी वो तो काफिर था ना, तो उसके नजदीक तो कुरान हदीस की कोई अहमियत होनी नहीं चाहिए थी, जाहिर सी बात है वो काफिर है, अल्लाह के नबी का मुनकर है। लेकिन उसने अपनी रिसर्च के बाद जो उसने स्टडी करी जा करके यहां पर हिंदुस्तान में, उसने ये लिखा कि ये जो इल्म इनके मदारिस में पढ़ाया जाता है ना, जो कि जाहिर कुरान हदीस और फिर फिका और फिर उसके बाद जो है वो दुनियावी उलूम भी जो अरबी जुबान में और फारसी जुबान में पढ़ाए जाते थे, उसने कहा अपने बड़ों को जाकर के कि इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं, खाली मेरे नजदीक इसकी हैसियत नहीं है बल्कि इवन जो यहां पे रहने वाले लोग हैं उनकी निगाह में इसकी कोई हैसियत नहीं, यहां पे जो रहने वाले हिंदुस्तानी हैं उनके नजदीक इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो हम क्यों इस तालीमी निजाम के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, हमें इसको स्क्रैच कर देने की जरूरत है, बिल्कुल इसको जो है ना वो डस्टबिन में फेंक देने की जरूरत है, और हमें अपना तालीमी निजाम यहां पर राइज करने की जरूरत है। ये उसने लिखा, हिंदुस्तानियों के नजदीक इस इल्म की है अहमियत खत्म हो गई, किस इल्म की, उस्वाए हसना वाले इल्म की हैसियत खत्म हो गई हिंदुस्तानियों की, उस्वाए हसना लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसन। तो उसने लिखा कि जो ये वाला इल्म हासिल करने वाले लोग होते हैं ना हिंदुस्तान के अंदर, तो कहता है अपने मिनट्स के अंदर कहता है कि व्हेन दे हैव रिसीव्ड इट, जब वो लोग ये वाला इल्म हासिल कर लेते हैं ना, जो यानी जो यहां पे जो ये वाला दीनी उलूम हासिल कर लेते हैं, दे मस्ट ईदर स्टार्व, या तो वो भूखे मरते हैं फिर उसके बाद, और लिव ऑन द पब्लिक ऑल द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, या फिर वो पब्लिक के रहमो करम पर होते हैं, उनके टुकड़ों पर जी रहे होते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, या वो भूखे मर जाते हैं।
क्योंकि उनके इस इल्म की कोई अहमियत ही नहीं है पब्लिक की निगाह में। ठीक है, तो ये हमारे कारिस्तानिया हैं, ये हमारे करतूत हैं कि जिसकी सजा अल्लाह ने ये दी है, क्योंकि हमने अल्लाह के नबी को ये अहमियत दी है ना। शलवार पाइंचे से, पाइंचा जो है वो टखने से ऊपर होने से ज्यादा नबी की सुन्नत नहीं है हमारी हमारी जिंदगी में, राइट। चंद जाहिरी सुन्नतों को हमने उसवा हसना का नाम देकर के जो है ना उसी के ऊपर फरेख्ता हुए हैं, और सारा उलूम जो है वो हम जो है वो दूसरे के पास जा जा करके हासिल कर रहे होते हैं अपने उलूम को, बिल्कुल बिल्कुल ही जब पसे पुश डाल करके, और समझते हैं यही हमारी कामयाबी हो रही है। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। ठीक है, जनाबुल्लाह शेर का दज्जाल से किस तरह अपनी हिफाजत की जा सकती है कुरान की रोशनी में। कल की क्लास में आपके सवाल फिर से पूछेगा इंशाल्लाह। वैसे तो काफी बातें हो ही रही हैं, आप आज तो जुम्मे में पता नहीं, खैर आप पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग से, उन्हें बहुत बात हुई है इस टॉपिक की, बहुत बात हुई है इस टॉपिक की। ठीक है, और कल दोबारा पूछ लेगा तो शायद दोबारा बात कर लेंगे इंशाल्लाह। बात की समझ होगी तोफी कदा फरमाएगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।